علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس بائی ایس او
Let me give you a brief introduction about myself. This is Asad Abbas and I am working as a senior brand manager in Mahindra Corporation Limited. Before this, I have also worked in the survey research laboratory, which is a pharmaceutical company. It's a multinational company and I have worked here in the business development department. Before that, I was a resident faculty in London Pharmacology and trained at the Medical Institute. I have contributed in a couple of books, pharmacy books. आज जो करने जा रहे हैं हम that is about job hunting. आप लोगों में से कितने लोग हैं जो साइंस की फील्ड के अंदर हैं? आर्ट्स वाले कितने लोग हैं? कितने लोगों का यह ख्याल है कि साइंस वाले लोग जो होते हैं वो लाइट होते हैं और जो आर्ट्स वाले लोग होते हैं वो آرٹس والے بہتر ہوتے ہیں؟ دونوں سیم ہوتے ہیں. تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ سائنس والے کیوں ہیں؟ لمیٹڈ آپشنس. لمیٹڈ آپشن سے بات کرنا کہتے ہیں کہ آپشنس کم ہوتی ہیں تو سائنس والے لوگ جو ہیں وہ آرٹس والے لوگ کم ہوتے ہیں. یہی لگتا ہے کہ اس کے بعد نوکری نہیں ملتی. اوکے, کتنے لوگ ہیں جو نوکری کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کر لیجیے. کتنے لوگ ہیں جو جاب نہیں کرنا چاہتے؟ نہ کہنے کی وجہ بزنس. بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم لوگ بات آئی ڈونٹ تھنک یو سو کہ یہاں پہ بات کرنی چاہیے نہیں, بٹ اگر آپ ویسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو میجورٹی آف دا اکانومی جو بوم آتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر وہ تبھی آتا ہے جب یہاں انٹرمیڈوز آتے ہیں, جب یہاں لوگ آتے ہیں جو کاروبار شروع کرتے ہیں, جو نوکریاں کریٹ کرتے ہیں. دس از واٹ از نام از سیڈ کہ کاروبار کے اندر ہمیشہ زیادہ برکت ہوتی ہے بنسبت کے ملازمت کے. بٹ اگین ایک بہت بڑا چنک ہماری جو یگ ڈیل ہے وہ جابس کے اندر آتا ہے, اسپیشلی وتھ دا کرنٹ اکانومک ریٹ جو کہ پچھلے چند سالوں کے اندر بہت بڑا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں بہت اچھی اوپننگ کریٹ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر بھی. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے اثر انداز ہوتی ہیں جب ہم جاب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. دا فرسٹ تھنگ از سوسائٹی, آل ایکسپوجر, چائلڈ ہوڈ ٹریننگ اینڈ فورتھ ون از دا کلچر. کلچر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں پتا رہا ہو, وہی چیزیں ہیں جو ہم لوگ روز مرہ زندگی میں لاشعور کے اندر کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. کلچر کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ عمومی طور پہ وہ نوکری اچھی تصور کی جاتی ہے جس میں آپ کو گھر سے ٹائی پہن کے نکلے, وائٹ شرٹ بیڈ ٹائی, آرام سے جا کے ایک ٹھنڈے آفس میں بیٹھ جائیں, ایسی نوکری کرنے کا خواب ہوتا ہے. سافٹ ویئر انجینئرز ہو, کسی بھی دوسرے انجینئرز ہو, ڈاکٹرز ہو, ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. Whether we accept it or not, the reality is that we all need the jobs, we all need white collar jobs. ایسے ہی میرا کوئی فارمل پریزنٹیشن نہیں ہے یار, آئی واز جسٹ انفارمڈ بفور یسٹرڈے کہ آئی ہیو ٹو پریزنٹ آن دس جاب ہنٹنگ سکلز. تو میں آپ لوگوں سے وہ باتیں کروں گا جو کہ شاید ریالٹی کے اندر ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور شاید وہ کہنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. So reality is that all of us need a job, which is a white collar job. Sales, marketing, resource management, in tamam fields ke andar hum jaana nahi chahte. Society ka bahut impact hota hai. Sab ye kiya jata hai ki jab aap doctor ban jayenge to uske baad achanak se bahut sare paise kahin se lene lag jayenge ya is tarah ke koi mamlaat ho jayenge. Reality iske liye against hoti hai. Exposure. Unfortunately in Pakistan agar aap dekhte ho to exposure nahi hota. جب آپ میٹرک کرتے ہو تو اس کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں آپ کے پاس, آپ شاید تین ہونے لگے ہیں, سائنس, آرٹس یا پھر تیسری کمپیوٹر سائنسز, چوتھی کوئی فیلڈ نہیں ہوتی. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ شاید ہم لوگ اکنامکس پڑھ لیں, آرٹس پڑھ لیں, آرکیٹیکچر بن لیں, آرکیولوجی کے اندر چلے جائیں, جیولوجسٹ بن جائیں, ہیلتھ فیسلیٹیٹرز بن جائیں, سوشل سیکورٹی آفیسرز بن جائیں. تو یہ تمام وہ فیلڈس ہیں جو شاید اس طرح ہم لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम छोटे होते हैं उम्मीदवार पे तो क्या तस्वर किया जाता है कि या तो इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा या पायलट होगा, ये शायद यही सोचते आते जाते हैं। कहानी चलती है आगे, बहुत सारी जगहों के ऊपर एडमिशन नहीं होते, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, मेडिकल में नहीं जा सकते, चेंज होती जाती है जिंदगी। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वजह से भी करूंगा क्योंकि आप लोग शायद सुबह के आएंगे, फॉर्मल चीजें देखने के थोड़े थक भी गए होंगे, वीकेंड है, बहुत दूर से भी लोग आए हुए होंगे टैबलेट लेके, तो सिर्फ थोड़ा सा एक रिकॉल करना चाहता हूँ चीजें। उसके बाद पहुंचते वहां पे है जहाँ पे किस्मत पहुंचा देती है, अपने आप पे कर्ज करते हैं कि कहाँ पहुंच गए, रिश्तेदार जो होते हैं वो कई तरह की बातें बनाते हैं, मेडिकल में नहीं हो सका, इंजीनियरिंग में नहीं हो सका, बी कॉम जो है वो बहुत ही फारिग सब्जेक्ट होता है, मैंने बी कॉम नहीं मैंने किया हुआ, लेकिन आर्ट्स में जो जाते हैं वो निकम्बे होते हैं, लाइफ में साइंस में जो जाते हैं वो लाइफ बच्चे होते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट यही बताते हैं ना बचपन से, मेरे अब्बा ने तो मुझे यही बताया था, ऐसे ही है ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो फाइनली यू रीच एट योर फाइनल डेस्टिनेशन, वो या तो कंप्यूटर साइंस हो, कॉमर्स हो या कहीं भी और जगह हो, आप लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तमाम वाले जो फिर में किए होते हैं खुद से, वो एक नई रूह आपके अंदर आ जाती है कि मैं इस फील्ड के अंदर आगे जाके न जाने अपना बहुत नाम पैदा करूंगा। चार साल की उम्र तौर पर प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, दूसरे तीसरे साल तक आते आते हिम्मत थोड़ी डगमगाती है, एम्बिशन जो है जिंदगी में वो कम होना शुरू हो जाते हैं, आप डेली अपने असाइनमेंट बनाते हैं और वो तमाम जो है वो अगले दिन पे यू होती जाती है, सोचते हैं कि वो कल कर लेंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ चलती रहती है। फाइनली ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को यह ख्याल आना शुरू होता है कि अब हमें अपना एक करियर बनाना है, यंग एज रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हुए हैं, हाई एक्सपेक्टेशन, हाई एम्बिशन, एक अपना बेंच मार्क आप लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, सारे मेरिट्स आप लोगों की होती है उस वक्त। बट सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि व्हाट शुड बी आवर करियर, हमें ज्यादा किससे है, एक ही फील्ड में एक ही तरह के लोग बहुत आगे जा रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट फील्ड के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। मैंने जब फार्मेसी की तो फार्मेसी करने के बाद बहुत सारी फील्ड थी, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, न जाने क्या क्या जहन में रहता था, हर एक के अपने अपने मशवरे थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा उस वक्त कि अपने आप को जानने की कोशिश की जाए, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। हमने से हर शख्स को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी दी है, आप दुनिया में जितने भी जीनियस देख लो वो तमाम लोग बहुत ही एवरेज मीडियोकर लोग थे, वो स्पेशल लोग नहीं थे, हाँ अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ उनको जरूर दी थी और वो लोग जानते थे कि उनकी मेन स्ट्रेंथ क्या है, उनकी मेन खूबी क्या है, मेन कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, वो एक पासे की बात जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने वक्त कर दी थी उनको मालूम था और उन्होंने सारी जिंदगी उसी के ऊपर प्ले किया। बहुत ही कम लोग होते हैं, मैं बहुत खुश हूँ जब लोगों ने कहा कि वो दे वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, उनमें तौर पर नौकरी की तरफ भी जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंजीनियर हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, देखते ही हैं कि बाहर कहाँ जाना है, सऊदी अरब में रजिस्ट्रेशन का क्या फार्मूला है, पाकिस्तान के हालात नहीं अच्छे, बाहर से हम लोग शायद जरूर कह रहे हो कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी का भी वेट करते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी एज़ वेल, जब जॉब मिलती है तो पता लगता है यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, आप लोगों की वो एक्सपेक्टेशन होती हैं या मेरी वो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जाऊँगा तो एक पी एन बाहर बैठा होगा, घंटी बजाऊंगा, पी एन अंदर आएगा, उसे कहूँगा चाय लेके आए, तीन फाइलें साइन करूँगा और शाम को घर चला जाऊँगा, लेकिन शायद जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। द जॉब इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या आपस में मीट करते हैं कि नहीं करते, ये बहुत जरूरी चीज है जब भी आप जॉब हंटिंग के बारे में सोच रहे हो। आप लोग क्या करना चाहते हो वो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीट कर रही होगी तो वो इक्वली इफेक्टिव होगा, इक्वली बेनिफिशियल होगा। तमाम सारी चीज़ें दुनियावी मसाइल आ जाते हैं और फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, और फाइनली एक सबसे बड़ी बात जो नौकरी में होती सबसे बड़ा हर्डल। अगर आप कहते हो लॉर्ड्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, एमएससी करके निकला हूँ, एमफिल करके निकला हूँ, इंजीनियरिंग करके निकला हूँ, मेरे साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये नहीं सही हो रहा, ये इस वजह से नहीं सही हो रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फ्रिक्वेंसी मुआशरे के साथ नहीं मिल रही होगी, उस जॉब मार्केट के साथ नहीं मिल रही होती जिसके अंदर हम जाना चाह रहे होते हैं। और फाइनली लोग जो होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। मैं नहीं जानता कि सरकारी नौकरी में क्या होता है, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा टफ होता है कि आप सर्वाइव कर सकें, कंपेटिटिव एज अपना हासिल कर सकें दूसरे लोगों के ऊपर। आप सब लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, आपको ग्रोथ चाहिए होती है, आपको फर्दर प्रमोशन चाहिए होती है, और वो सब कुछ आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज की वजह से होता है, सिर्फ फांसी की बात की वजह से जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने बख्श कर दिया है, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, एक आम रूटीन के अंदर रहना चाहते हो, आम रूटीन की तरह नौकरियां करना चाहते हो, या अपने अंदर उस पॉइंट को जानना चाहते हो कि अल्लाह ताला ने क्या खूबी दी है, ये पता करना चाहते हो? कुछ चीजें जो है नौकरी हासिल करते हुए वो बहुत जरूरी होती है कि आप जब जॉब हट कर रहे होते हो, जब आप फाइनल ईयर में होते हो, तो उस वक्त क्या क्या चीजें देखनी होती हैं आप लोगों ने। रूल नंबर वन इज चूज अ करियर दैट इज समथिंग यू रियली लाइक टू डू। मैं इंडस्ट्री की जॉब में 9 to 5 सुबह से शाम तक नहीं बैठ सकता, मेरी नेचर है कि मैं बाहर फैलना चाहता हूँ, मैं नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो क्या मुझे ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसमें लोगों से मिलने का मौका ना मिले? क्या करनी चाहिए मुझे? तो मुझे ऐसी नौकरी करनी चाहिए जो मेरी नेचर से मैच करती हो, वो नौकरी करना जरूरी है जो कि आपकी सलाहियतों के मुताबिक हो। रूल नंबर टू, डू योर रिसर्च एंड चूज केयरफुली एंड थॉटफुली। जब आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो बहुत केयरफुली सोचो कि मुझे क्या करना है, करियर के अंदर कहाँ जाना है। Make it meaningful to you. अगर काम में मजा नहीं आता तो वो काम करने का फायदा नहीं होता। आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिसके अपने करियर में शुरू में धक्के खाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। न्यूटन, आइंस्टाइन, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपने करियर के शुरू में बहुत ज्यादा बातें सुनी लोगों से, नाकाम हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी समेटी, इनके एक जुनून था इनके अंदर। चूज करियर ऑप्शंस दैट मैच विद योर वैल्यू। कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकते जो वैल्यू से अगेंस्ट हो, दो नंबर सॉफ्टवेयर तो पायरेसी तो नहीं कर सकते, या कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं बना सकते जो फॉरन गवर्नमेंट टूट जाए, यहाँ पे ये कहा जाए कि बेईमानी करो, या कोई ऐसी रिसर्च के अंदर तो नहीं जाना चाहते जो कि आपके मुल्क के खिलाफ हो, आपकी नेशन के खिलाफ हो। तो वो चीज़ करें जो कि आपकी वैल्यू से मैच करें। शैंपेन आप लोग नहीं बेच सकते, हम लोग नहीं बेच सकते क्योंकि हमारा दीन इजाजत नहीं देता, वो जितनी बढ़ती बड़ी कंपनी बनाती हो, जितना मर्जी अच्छे पर्स हो, लेकिन हम वो नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है। हम दूसरों की मदद कर सकें, प्रेस्टेज, हाई इनकम, ये तमाम चीज़ें जो मैटर करती हैं। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, आप लोगों ने तस्दीक को वर्क टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हो। ये तमाम वो चीज़ें जो कि आपको सोचनी चाहिए जब आप नौकरी तलाश कर रहे हो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नोइंग योरसेल्फ। अपने अंदर वो खास एक चीज़ देखो जो कि जानना चाहते हो, पता लगे कि क्या चीज़ है स्पेशलिटी। ये तमाम चीज़ें आसान होती जाती हैं जब आपको पता है कि आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। फास्ट इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पता लग रहा है कि जी इंडस्ट्री जो है वो तो खत्म होती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कम होती जा रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, चाइना का कॉम्पिटिशन है, यूरोपियन मार्केट ग्रो कर रही है, तो मैं ऐसी मार्केट के अंदर चला जाऊँ जहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो रही है, हमें प्रोडक्शन करना चाहता हूँ तो कभी भी सूटेबल नहीं रहेगी। तो अपनी मुल्क की इकॉनमी करंट सिचुएशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट क्या कहता है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत होती है। अपने करियर को इसका प्लान करो कि उसके अंदर रिस्क जरूर हो लेकिन एक प्रॉपर करियर प्रोग्रेशन हो। A college degree does not guarantee employment. बहुत सारे वो लोग जो यूनिवर्सिटी में बहुत लाइक होते हैं अमूमी तौर पर प्रोफेशनल जिंदगी में आके फ्लॉप हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था तो मेरा बात ये बनता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिले, लेकिन उसका रिवॉर्ड जो था वो अच्छे ग्रेड की सूरत में मिल गया। लाइफ इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट कि आप लोग तो अच्छे ग्रेड लिए हुए हैं तो आपको आगे जाके भी कुछ नया मिल जाएगा। द मोर यू नो द ग्रेटर योर मार्केटेबिलिटी, आप जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हो वो काम आपको आता है कि नहीं आता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कपल ऑफ फैक्टर्स एक्सपोज अ नंबर ऑफ कैरियर्स एंड मेजर, जब फाइनल ईयर के अंदर हो तो ये देखो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो लोग एम बी ए कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि यार एचआरएम के अंदर जाना है, फाइनेंस में जाना है, अकाउंटिंग में जाना है, मार्केटिंग के अंदर जाना है, किस फील्ड के अंदर जाना है, काफी सारी चीजें जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए। गेट एडवाइस फ्रॉम द पीपल इन योर टारगेट प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन के जो आपके सीनियर हैं उनसे हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है। फॉलो योर पैशन, डेयर टू ट्राई समथिंग न्यू। कमोडिटी का समझते हैं आप, कमोडिटी क्या होती है? वो चीज जो कि बहुत ज्यादा आम हो, जैसे कि चावल, ठीक है, आम चावल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिक रहा होता है, ये कमोडिटी है। गार्ड राइस उससे ज्यादा महंगा होता है लेकिन होता चावल ही है। गार्ड राइस इज अ ब्रांड और कमोडिटी क्या है? कमोडिटी है एक आम चीज। हजारों लाख, एक क्लास से कितने ग्रेजुएट्स होते हैं? सैकड़ों में सब, लेकिन उनमें से टॉप के ऊपर कितने जाते हैं? चार पांच सात बस। तो वो चार पांच होते हैं, वो चार पांच आगे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। दे डेयर टू ट्राई समथिंग न्यू, जो आपके बाकी कोलीग्स नहीं कर रहे होते। फोकस ऑन अ मेजर जस्ट टू गेट अ करियर आउट ऑफ इट। कभी भी एक चीज की तरफ मत जाएं, अपनी ऑप्शंस हमेशा ओपन रखें। सिलेक्ट अ मेजर जस्ट बिकॉज इट्स कूल और सीम्स टू प्रॉमिस प्रेस्टीज, सिर्फ ये कि मुझे एक 9-to-5 जॉब या एक व्हाइट कॉलर जॉब इस वजह से चाहिए क्योंकि सोसाइटी में मेरा नाम होता है, वो भी नहीं सही। लेट समवन एल्स पुश मी टू जॉब, मेरे अब्बा ने मुझे कह दिया कि आपको जाके बैंक की नौकरी करनी है तो मैं बैंक की नौकरी करना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डू व्हाट यू एग्जैक्टली लाइक। आपके इंटरेस्ट क्या है इनको जरूर देखो, आपकी स्किल्स क्या है उनको देखिए, आपका एटीट्यूड क्या कहता है उस बारे में सोचिए, पीपल स्किल्स एक्सपीरियंस आपका किस चीज के अंदर है। अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आ सकते हैं, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप मार्केटिंग जॉब के अंदर आ सकते हैं, आप अच्छा अटेंडेंस कर सकते हैं सेल्स जॉब में आ सकते हैं, नंबर्स में बहुत अच्छे हैं फाइनेंस जॉब के अंदर आ सकते हैं, फैमिली ट्रेडिशन की तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती है। लेट्स कम टू द मेन पार्ट, जहां पर मैं कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है आप, यहां से मैं थोड़ा सा आप लोगों से हेल्प लेना चाहूंगा। मुझे ये बताएं, घड़ी है आपके पास, कितने लोगों के पास घड़ी है? सब लोगों के पास घड़ी है, मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल के अंदर कौन कौन से आते हैं? अच्छे तो खासे आ रहे हैं, तो एक आता है मोबाइल चाइना वाला और एक आता है नोकिया। नोकिया को सब लोग क्या जानते हैं, किस वजह से जानते हो? पायदार है, और कोई फीचर्स बेहतर है, रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन जो दूसरा मोबाइल है उसको नहीं जानते, चाइना वाला मोबाइल, वो एक कमोडिटी है, जबकि नोकिया एक ब्रांड है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि अपने आप को ब्रांड दीजिए, अपने उस खासे की चीज को बाहर निकालिए। व्हाई पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग इज सो इंपॉर्टेंट, इस शख्स के बारे में जानते हैं आप में से कोई इस शख्स को जानता है? नहीं जानते हैं? इसको जानते हो? अच्छा बोलिएगा, जो शख्स जानता है खड़ा होकर बताए। लास्ट में स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स कौन था? एप्पल का ओनर। आप इसको क्यों जानते हैं? क्योंकि ये अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कहता था। ये शख्स का नाम है मिस्टर डेनिस, जो कि एप्पल में इनके साथ रिसर्च डेवलपमेंट में थे। स्टीव जॉब्स टू ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस मैन, विदाउट डेनिस देयर वाज नो स्टीव जॉब्स। आप सबको मालूम होगा, काफी लोगों को मालूम होगा कि ये स्टीव जॉब्स है जो कि एप्पल का ओनर है, जो कंपनियां मोबाइल बनाती है, नोटबुक्स बनाती है, लेकिन इस शख्स के बारे में कोई नहीं जानता। ना जानने की वजह, क्योंकि इसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की थी। मेहनत करना एक राइट प्रोफेशन के अंदर होना बिल्कुल सही चीज है, लेकिन अपने आप को बताना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सनल ब्रांडिंग. कुछ रिजल्ट से जो मैं नेट के ऊपर देख रहा था, अब आप देखिए कि डेनिस रेशी के ऊपर कितने हैं 17,648 और यहाँ पे फिगर्स बिलियन के ऊपर है. स्टीव जॉब्स को दुनिया फॉलो करती है क्योंकि उनको लगता है कि शायद स्टीव जॉब्स जो था वो एप्पल बनाने वाला था. एप्पल का जो क्रिएटिव हैंड था वो सारा डेनिस रेशी के पास था. लेकिन अगेन हर नए नस्ल पुराने लोग तमाम लोग जो एप्पल यूज कर रहे हैं वो जानते हैं स्टीव जॉब्स को. नौकरी जब करने जा रहे हो तो अपने आप को एज अ ब्रांड लेके चलो. अपने जहन में तसव्वुर कर लो कि आप एक आम नहीं हो, आम शख्स नहीं हो, एक स्पेशल ब्रांड हो, पर्सनल ब्रांडिंग करो. सिमिलरली डेनिस रेशी वर्सेस स्टीव जॉब्स गूगल रिजल्ट, वहां भी चले जाएं तो मामला कमोबेश यही नजर आता है. थॉमस एडिसन का नाम सुना है? कौन था? कौन था? आवाज नहीं आ रही मुझे. बल्ब इजाद किया था. बल्ब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना. निकोला टेस्ला, इसके बारे में कोई जानता है? इसके बारे में कोई जानता है? नहीं जानता. मार्कोनी के बारे में जानता है? इस शख्स ने इलेक्ट्रिक करंट जो था ऑल्टरनेटिव करंट वो इजाद किया था बेसिकली. उसके बारे में उसको दरियाफ्त किया था बट चूंकि अपने आप को ब्रांड नहीं कर सका इसलिए इसको दुनिया नहीं जानती. तो जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, जब आप ग्रेजुएट होने वाले हो, आपके बारे में सबको पता हो. ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाती है, वहां पर टैलेंट हंट होता है. उस टैलेंट हंट के अंदर कौन लोग आगे आते हैं? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को ले लेती है जिनके ग्रेड स्कोर अच्छे होते हैं या जिनकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होती है, जिन्हें कोई नहीं जानता या जिन्हें सब जानते हैं. जिन्हें सब जानते हैं उनकी स्किल्स के बारे में शोर होते हैं. जॉब हंटिंग होती है प्रोडक्ट लॉन्च की तरह की. जब आप देखते हैं कोई नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रही है उसी तरह होती है जॉब हंटिंग. प्रोडक्ट क्या है? आप लोग प्रोडक्ट हैं. मार्केटिंग प्लान इज आप जिसका प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान बनाते हो, अपना मार्केटिंग प्लान बनाओ. अपने बारे में सोचो कि कहाँ जाना है, जहन के अंदर चीजें लाओ. मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री सर्च करो. अगर आप इवन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो. आप लोग डिफरेंट फील्ड के अंदर जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो. सोचो प्रोडक्ट ब्रोशर क्या है, आपका रिज्यूमे है. प्रोडक्ट ब्रोशर देखते हैं ना, चाय की पत्ती के होते हैं, उनके मार्केट में पड़े होते हैं, नई आइसक्रीम आई है मार्केट में, बादाम वाली आइसक्रीम, पान वाली आइसक्रीम, उसके ब्रोशर देखे होते हैं ना दुकानों में. इसी तरह आप जो रिज्यूमे देखते हो वो रिज्यूमे आपका ब्रोशर है. जब एक बंदा आपके रिज्यूमे को देखता है तो उससे आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है. जब तक आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं होगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में चीजें क्लियर नहीं होंगी. फ्री सैम्पलिंग, फ्री के प्राइस मिलते हैं ना. अक्सर आप देख रहे होते हो कि आप कहीं बड़े स्टोर में जाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई शख्स खड़ा होता है और आपको कहता है ये बिस्किट खा के देखें मुफ्त के अंदर, ये चॉकलेट नहीं आई है ये चॉकलेट खा के देखें. तो वो क्या होता है बेसिकली, वो फ्री सैम्पलिंग होती है. आपकी इंटर्नशिप क्या होती है, मुफ्त में किया हुआ वो काम जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है. इंटर्नशिप में पैसे तो नहीं मिलते ना, क्वारी होती है. जेब से टिकट पैसे लगा के, पेट्रोल लगा के आप इंटर्नशिप पे जाते हो, क्वारी करते हो, पूरे दिन सबकी बातें सुनते हो. वो फ्री सैम्पलिंग क्या होती है, वो आपकी बेसिकली फ्री सैम्पलिंग है जो कि आपकी जॉब के अंदर होगी. सेल्स मीटिंग वो है आपका इंटरव्यू. इंटरव्यू के अंदर आप क्या कह रहे होते हो, आप नौकरी नहीं तलाश कर रहे होते, आप उसको सेल कह रहे होते. जो अपने आप को अच्छी तरह सेल कर देता है, अपनी क्वालिटीज को अच्छी तरह बता देता है, नौकरी उसको मिलती है. किसी ने ये देखा है कि फलां शख्स जो है यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करता है उसको पहले नौकरी मिल गई, एक आम एवरेज वाला बंदा है उसको लेट मिली, क्या कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया है? है कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया? नहीं है. अगर बात कहाँ पे आती है, वो पर्सनल ब्रांडिंग पे आती है, आपके इंटरव्यूज के ऊपर आती है. आपकी प्रेजेंटेशन जो है, जो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है, वो आपकी प्रेजेंटेशन है. आप किस तरह से वहां पे जाते हो, किस कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हो, किस तरह से तैयार होकर जाते हो, एक प्रोफेशनल वे में जाते हो या नॉन प्रोफेशनल वे में जाते हो, तमाम चीजें मैटर कर रही होती है जब आप ऑफिस में जाते हो. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिस तरह आप अपने केस स्टडीज बनाते हो यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्रेजेंटेशन देते हो, उन केस स्टडीज के ऊपर एंड में सवाल जवाब होते हैं, उसी तरह अगर आप देखो तो आपका एम्प्लॉयर भी जो है वो आपसे सवाल जवाब पूछता है, आपके बारे में पूछता है, आपकी फैमिली के बारे में पूछता है, आपने जो मेजर प्रोजेक्ट किए हैं उनके बारे में पूछता है, जो फ्री सैलरिंग आपने की हुई है, जो इंटर्नशिप की हुई है उनके बारे में पूछता है, तो आप उनके बारे में पॉजिटिवली बताओ, आप किस तरह से बताते हो वो मैटर करता है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और आप उसे अच्छी तरह से नहीं बता सके तो शायद आप कामयाब ना हो। सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, वो भी पर्सनल ब्रांडिंग है, अपनी चीजों को प्रॉपरली हाईलाइट करना है। फॉलोअप्स, आप जॉब में कितने इंटरेस्टेड हो, आपने एक शख्स को सीवी सेंड कर दी, आपने अपना कवर लेटर सेंड कर दिया, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं किया, फोन करके नहीं पता किया, तो क्या होगा, जॉब आपको नहीं मिलेगी। विनिंग द सेल्स, विनिंग द जॉब, आप क्या कहते हो जब आप इंटरव्यू के अंदर जा रहे होते हैं, अपने टीचर के साथ जो है प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, रिवर्टर्स बनाते हो मार्केटिंग में या सॉफ्टवेयर के अंदर या इवन मेडिकल के अंदर, केस स्टडीज पे डिस्कस कर रहे होते हो, यू आर एक्चुअली इन अ सेल्स मीटिंग, और वो आपकी क्या होती है, आपकी जॉब हंटिंग होती है। अगर आप इसके अंदर कामयाब होंगे तो आपको जॉब मिल सकती है। प्रोडक्ट लॉन्च इज लाइक अ जॉब हंटिंग। आप मार्केट मैनेजर बनना चाह रहे हो, ब्रांड मैनेजर बनना चाह रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हो, सिविल इंजीनियर बनना चाह रहे हो, वो तमाम बन सकते हो आप लोग। आप लोग बेसिकली एक प्रोडक्ट हो, एक कमोडिटी हो जो अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हो। जो शख्स इस काबिश के अंदर कामयाब हो गया वो जॉब हंट कर सकता है। जरूरी चीज़ क्या है, आपकी टारगेट मार्केट कौन है, ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। किस इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो, किस तरह से जाके एक्ट करोगे। ब्रोशर देखें जो हम तो आपके दुकानों पर जाके लगे हुए होते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्टर लगे होते हैं, नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रही है, टीवी तो देखते होंगे, देखते हैं उसमें आजकल एक नई आइसक्रीम आ रही है जो जिसके अंदर पान है आ रही है, उस आइसक्रीम के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, पान के जायका आइसक्रीम में बहुत ही बकवास चीज़ है, लेकिन प्रमोशन है, वो अपने आप को बेच रहे हैं। इसी तरह जब आप एक कैंडिडेट इंटरव्यू के अंदर होता है वो भी अपने आप को सेल कर रहा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है आपकी रिज्यूमे, आपका सीवी, आपका एम्बेसडर होता है। एम्प्लॉयर ने आप लोगों को नहीं देखा, आपसे बात नहीं की, वो सिर्फ इस चीज़ के बिना पे आपको रिजेक्ट कर रहा होता है, वो आपकी सीवी है। सीवी आपका एम्बेसडर होता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव स्क्रीनिंग टूल, आपको निकालने का बहाना ढूंढा जा रहा होता है। अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए नहीं बैठ सकते हो। सबसे क्रिटिकल चीज सीवी राइटिंग होती है, इट्स अ नेगेटिव स्क्रीनिंग टूल। मैं वही जो बात आप लोगों से की है कि बहुत कैजुअल लेते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन लोगों में आती है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। अभी बात कर रहा था कि होता क्या है, किसका सीवी बनाते हैं, कोई शेयर करना चाहेगा, कोई फाइनल ईयर है जिसने अपनी सीवी बनाई है अभी तक, कोई ऐसा शख्स मजमे में जिसने आज तक कभी सीवी बनाई हो, आप किस तरह बनाते हो, हेजिटेट ना कीजिएगा, सिर्फ आपस में एक शेयर कर लीजिए। कहाँ पे जाके बनाइए, कहाँ पे जाके बनाई थी, पहले बैठ के बनाई थी, सही। अमूमी तौर पर क्या होता है, जब मैंने ग्रेजुएट किया, मैं पास आउट हुआ तो मैं इसके ऊपर इंटरनेट कैफे में चला गया, वहाँ पर जाके कहा मुझे सीवी बना के दे दो, अपनी क्वालिफिकेशन बताई मैंने, और उसके बाद क्या किया कि बस प्रिंट आउट ले लिया, वही एक सीवी मैंने हर जगह पोस्ट कर दी। उसमें मैंने ये बताया कि मैं आज से 10 साल के बाद ये बनना चाहता हूँ, बताता रहा मेरी ख्वाहिशात क्या है, मैं बहुत अच्छा पैसे भी अच्छे चाहता हूँ, सब कुछ ये चाहता हूँ, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, मेरी खूबियाँ क्या हैं। कभी कभी इसे कॉल भी नहीं आई, फिर जो थे अपने सीनियर्स थे या जो अपने बड़े थे उनसे पूछता रहा कि सीवी के अंदर गलती क्या है, तो बड़ा कैजुअल होकर मैंने बनाई थी, मैं या मेरे दोस्त हमेशा ये करते थे कि ऐसी फारिक सी बनाते थे सीवी। लेकिन बाद में रियलाइजेशन ये हुई कि जब तक सीवी अच्छी नहीं होगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहाँ पर मैं नेगोशिएशन कर सकूँ एम्प्लॉय के साथ बैठ कर, जहाँ पर मैं उसको ये बता सकूँ कि मैं एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता हूँ। एक जनरल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सीवी की दे रहा हूँ, मार्शल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस को उन्होंने क्या रखा हुआ है, मटीरियल स्टेटस, डोमिसाइल, करियर ऑब्जेक्टिव में स्पेलिंग चेक करो, करियर में क्या स्पेलिंग लिखे हैं, नाउ अगेन वही चीज ऑब्जेक्टिव के बारे में, टू परस्यू माई करियर इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एज अ प्रोफेशनल, टू अप्लाई माई स्किल्स एंड नॉलेज इन एन एनवायरमेंट वेयर दीज स्किल्स आर वैल्यूड एंड वैल्यूएबल. Now the employer is not concerned with his objectives, कि वो क्या कर सकता है, उसको कौन सी environment चाहिए. The problem is कि employer को वही चीज चाहिए जो वो चाहता है. आप क्या environment चाहते हैं, आपके objectives क्या है, वो उसके बारे में डिस्पॉलेट है. आसान अल्फाज में आपको ये बताऊंगा, अगर मैं एक दुकान चला रहा हूँ, उस दुकान में मुझे एक लड़का रखना है हेल्पर के तौर पर, लड़के की ख्वाहिशात ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक दिन जाके बहुत बड़े स्टोर का मालिक बन जाऊं, मुझे उसके ऑब्जेक्टिव से कुछ लेना देना होगा, नहीं होगा ना. एक बंदा ये है, दूसरा बंदा मेरे पास आता है जो मुझे ये कहता है कि मैं हार्ड वर्क के जरिए, डेडिकेशन के जरिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के जरिए दुकान की जो ग्रोथ है उसको आगे लेके चला जाऊँ बहुत ज्यादा, और फिर स्टोर इंचार्ज बन जाऊँ. अब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव मैच कह रहे हैं, नहीं कह रहे. अगर दुकान बड़ी होती है मेरी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसको स्टोर इंचार्ज बना दूँ, मुझे कोई फर्क पड़ता है, मेरा तो कारोबार बढ़ गया ना. अब मैं उसको स्टोर इंचार्ज बनाऊँ या कुछ भी बना दूँ, उसका काम भी पूरे हो गए, मेरे भी पूरे हो गए. तो दरमियान वाली जो सिचुएशन होती है, अब विन विन सिचुएशन, वो बहुत ज़रूरी होती है. अगेन स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, टाइपोग्राफिक मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है सी वी के अंदर. फ्रेश ग्रेजुएट्स को अमूमी तौर पर रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं, हर जॉब के लिए अपनी सी वी डिफरेंट बनाओ. आप जब एड देखते हो किसी जगह पे भी, अखबार के अंदर देखते हो, आपका जो जॉब प्लेसमेंट सेंटर है वो आपको बता रहा होता है, तो सी वी को देखो कि उन्हें क्या बनना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, फिर उसके मुताबिक जो है अपनी सी वी बनाया कीजिए. ऑब्जेक्टिव उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करने चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर के अंदर है, किस वो काम क्या करती है, लोगों का एनवायरमेंट क्या है, उस तमाम चीज़ों के बारे में रिसर्च करें. सीवी बनाते हुए अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो अपनी डिग्रीज पहले लिखें, ठीक है. कोशिश करें क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो एक सफ़े से ज़्यादा की सीवी नहीं होनी चाहिए. रेफरेंसेस अगर मांगे जाएँ तब दें, वरना लेने की ज़रूरत नहीं है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए आपकी, पहले जो आपने डिग्री ली हुई है उसके बारे में बात हो, फिर उसके बाद बाकी डिग्रीज होनी चाहिए. एक चीज़ जो ऐड करना बड़ा बेनिफिशियल होता है वो ये है कि कोर कॉम्पिटेंसीज आपको ऐड करते हैं, तो कोर कॉम्पिटेंसीज के बजाय अगर आप पॉइंट ऐड करते हैं, फाइव रीजंस व्हाई द कंपनी शुड हायर मी, या इस तरह की कोई डिफरेंट चीज़ जो कि नज़र आ रही वो अगर हो जाए इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा बेहतर है. Points to remember: immaculate, visually soothing, clutter free. Font जो है वो font जो है उनकी तौर पर एरियल का, नहुमा, ये कैलिब्री, इस तरह के font यूज करने चाहिए जो कि विजिबिलिटी जिनकी कंपेरेटिवली बेहतर है. बोल्ड उन चीज़ों को करें जो कि मेन हेडलाइंस हो, ठीक है. आपकी एजुकेशन या मेन बुलेट पॉइंट उसको हेडिंग दे दी, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आम font के अंदर होनी चाहिए. टाइप ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स एज कैपिटल्स एंड जितने अवॉइड कर सके इसको बार बार पढ़ें, देखें कि कहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक हुई है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कहाँ पे ग्रामेट, आई मीन एवरी मिस्टेक शुड बी चेक अगेन एंड अगेन. टोटल डायनामिक स्पेलिंग पिक्चर. यूरो सीरीज या यूरोप के अंदर जो है बाहर सीरीज चलती है, आपकी तस्वीर के बगैर काम चल जाता है, बट बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी तस्वीर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. लोग क्या करते हैं, किसी शादी में गए, वहाँ पर जाके जो तस्वीर दिखाई थी वो आप लोगों ने करना शुरू कर दी, तो तस्वीर आप लोगों के ब्लॉग में बहुत बेहतर होनी चाहिए और प्रोफेशनल से खिंचवाएं. सी वी शुड बी लाइक अ सेलिंग प्रपोजिशन रादर देन अ बैगर्स अपीलिंग पेपर, कि मुझे नौकरी दे दी जाए, इसके बजाय उन्हें मजबूर किया जाए कि आपको जॉब मिलनी चाहिए. वेन टू सेंड, अमूमी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में जो मंडे का दिन होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. मंडे टू फ्राइडे जो होता है ये वर्किंग डेज होते हैं और मंडे वाला दिन बहुत हेक्टिक होता है. अगर आप मंगल को सीधी पोस्ट करेंगे तो उसको बुध या शुक्रवार को मिलेगी, ठीक है, या वो बुध वाले दिन देखेगा, तो उस दिन को आप मेरी कंसिडर ना करें। आइडियल टाइम जो है वो वीकेंड्स के ऊपर होता है, ताकि वो मंडे ट्यूजडे वाले दिन आपको, ट्यूजडे वाले दिन आपकी सीवी को देख सके। होम टू सेंड, जिस बंदे को भेज रहे हो उसके बारे में प्रॉपर आपको पता हो, गलत नाम कभी मत लिखिएगा, पता हो उसका प्रॉपर डेजिग्नेशन क्या है, उस बंदे का प्रॉपर नाम क्या है, और फिर उसको एड्रेस करें डायरेक्ट। सेंड फॉर प्रोफेशनल ईमेल आईडी, जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलर्स हैं, आपके सीनियर्स ग्रेजुएट्स हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से निकलते रहते हैं, वो तमाम आपको हेल्प कर सकते हैं। आपकी ओवरऑल पैकेजिंग, ओवरऑल जो आपकी ऑफरिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। सो मेक श्योर कि एक एक चीज़ को आप जो है स्टेप वाइज करें। फर्स्ट अपने आप के अंदर जो है खासे की बात उसको देखें, अपनी कोर स्पेशलिटी को देखें, ये सोचें कि मैंने कहाँ नौकरी करनी है, उस सेक्टर के बारे में देखें कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाएं, अपने वो सीनियर्स, अपने वो कलीग्स जो उस प्रोफेशन के अंदर ऑलरेडी हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहें। सोशल मीडिया की जो आजकल वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन और फेसबुक, यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ लिंक में रहें। जॉब की प्रॉपर प्रिपरेशन करें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड हो, रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद में आपको अगर जल्दी चल जाते हैं तो जल्दी हाईलाइट कर सकते हैं कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर जिस दिन जॉब करने जाएँ, इंटरव्यू के लिए जाएँ, वो दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है। सो अगेन बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमेशा सेम रहती हैं, बट अगेन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है उसको जरूर याद रखें, और ये तमाम छोटे छोटे पॉइंट करें तो आपको जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो सकता है। कवर लेटर शुड बी मेड बाय द एवरीवन, जॉब कैन यू हेल्प मी, इसका नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग के बारे में बता रहा था कि जब आप इंटरव्यू लिए जाएँ तो क्या हो, आम दिखने वाला तेल और शहर और कैटेक्स के तेल में फ़र्क होता है, यही एक आम बंदे में और आप जब इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उसमें फ़र्क होना चाहिए। अगेन माई लास्ट मैसेज शो आर टू जेंटलमैन, सक्सेस इज सर्चिंग पीपल, बी सी, बी आर्टिकुलेट एंड मास्टर। अपने विजिबिलिटी बढ़ाइए, इन तमाम चीज़ों को बढ़ाइए, जो शख्स दिखता है वो इस मार्केट के अंदर दिखता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस, सजेशंस, योर फीडबैक, पूछना चाह रहे हो कुछ?
बेहतरीन
इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो आपको एक स्पेसिफिक लिमिट्स तक लेके चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्स के ग्रेजुएट हो, जी आई के ग्रेजुएट हो, आई बी कराची के ग्रेजुएट हो, तो ऑब्वियसली आपको हेल्पफुल जरूर होगा, लेकिन अपने आप को सेल किस तरह करते हो आगे जाके, आपका एटीट्यूड क्या है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप जॉब में एंटर होने के बाद कितनी डेडिकेशन शो करते हो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आई बी ए से निकलने वाला हर शख्स जो है वो एनजीओ का हेड नहीं बन जाता। आपके क्लास में से जो एक डॉक्टरी का बैच होता है, उसे एक डॉक्टरी के बैच में से सब लोग जो होते हैं वो शायद के प्रिंसिपल नहीं बनते, या वो बहुत ऊपर नहीं जाते। बहुत सारे लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, बहुत कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, मार्केटिंग में एक अंदर सेल्स रैप भी रहता है, दूसरा हेड ऑफ सेल्स बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन अगेन, अगर अपॉर्चुनिटी मिले या अगर आप कर सकते हो तो हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि जो टॉप रैंक स्कूल है आपका, जो टॉप रैंक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एडमिशन लिया जाए, वहाँ से ग्रेजुएट हो, वो ऑब्वियसली आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं फ्यूचर के अंदर। थैंक यू।
कभी कभी सोसाइटी आपको मजबूर करती है कि जो भी जान मिले वो आप कर लो, क्या ऐसा करना जायज है, सही है?
मुझे नहीं पता कि ये हलाल है या हराम है, लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर देखें, जब तक कोई जॉब, बाकी ये हकीकत है, इन्फ्लेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसमें अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप वेकेंसी करें। मैंने आपको फ्री सैंपल का बताया था, फ्री सैंपल क्या होते हैं, वो आपके मुफ्त में की हुई नौकरियां हैं, वो आपके मुफ्त में की हुई इंटर्नशिप्स हैं, या आपकी दूसरी फील्ड के अंदर है जॉब जो आप कह रहे होते हैं, जो कि आपके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही होती है। हम उम्मीद है आप क्या कहते हैं, आपका एक शॉर्ट टर्म विजन होता है कि मैंने पहली काम ये करना है कि मेरा घर चलता है, मेरा चूल्हा चलता है। उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है जो कि आप देख रहे होते हो कि मैंने 10, 20, 25 साल के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजीशन के ऊपर होना है। तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो हमेशा क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना।
ये मेरा सवाल है कि अक्सर जॉब के दौरान ये भी होता है कि 1 ईयर or 2 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को हैंडल करने का क्या तरीका आपकी नजर में?
अगर फाइनल ईयर में हो तो बहुत कोशिश करें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर्नशिप मिल रही हो वो जरूर करें। अमूमी तौर पर होता यह है कि ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली ये चाह रही होती है कि उनको कम पैसों में बंदे हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ एक मसला ये होता है थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे हों कि वो जॉब जल्दी छोड़ देते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते। सोचा हुआ यही होता है कि पहले दिन जाएंगे तो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलेगा ये सब चीजें, लेकिन उन जॉब ऐसा नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप बहुत सारी जो है इंटर्नशिप करें उससे पहले, क्योंकि प्रोफेशनल कॉलेज में खासा टाइम होता है। लेकिन 5 साल की डिग्री है, फार्मेसी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 3rd ईयर के बाद से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इंटर्नशिप करें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो आपको बहुत पे ऑफ करती है। और जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो मीन बाय तो उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो आपको बैर करना आसान होता है कि आप वहीं पे जॉब कर लो, और अगर वो आपकी परफॉर्मेंस एटीट्यूड से इम्प्रेस होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको जॉब भी ऑफर कर देते हैं। तो मैं यही रेफर करता हूँ सब लोगों को जो जूनियर्स हैं मेरे भी अपने फार्मेसी के भी, कि आप लोग इंटर्नशिप ज़्यादा से ज़्यादा करो, और उससे एक आपको पता लग जाता है कि मैंने करना क्या है फ्यूचर के अंदर। लोग इंडस्ट्री में बोर हो जाते हैं, सेल्स में जब धक्के खाने पड़ते हैं तो वहाँ पे बोर हो जाते हैं, तो पहले डिसाइड कर लो, जब तक प्रोफेशनल करियर में आने से पहले डिसाइड कर लो कि मैं कहाँ आना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं फ्यूचर के अंदर। आप लोग
अगर सपोज आप किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में, ऐसे कंफ्यूजन में क्या है?
देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि 2-3 फील्ड ही होती थी हमारे पास, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पास टेलीविजन में आप देख रहे होते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो होते हैं पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, फाइनेंस का जो बंदे होते हैं वो आगे जाके मैनेजमेंट हेड हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो उसी के अंदर एक्सेल करो, आपका शौक जो है बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अब आप देख रहे होते हो कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं वो सेल्स के अंदर भी होते हैं मौजूद होते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो मार्केटिंग के अंदर होते हैं, वो एक आपकी जो एक खासे की बात होती है ना, जो एक आपका सेलिंग एज होता है, जब इंसान वो पहचान लेता है तो हमेशा वो वही करता है जो उसको सूट करती है प्रोफेशन। एक शख्स को अगर पिंजरे में बंद कर देंगे और उसे कहेंगे कि आपको ये वैल्यूज मिल रहे हैं लेकिन उसकी नेचर है कि वो हवा में उड़ना चाहता है, तो शायद वो जॉब ना करे, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट करे और फिर वही करेगा जो वो करना चाह रहा होता है। मेरी यही ऑब्जर्वेशन है मेरी ज़िंदगी में, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने जिस चीज़ के अंदर ग्रेजुएट किया हुआ वो जिस सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएट किया हुआ उसी को परस्यू करना चाह रहा हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत देर बर्दाश्त किया, मेरी कोशिश ये थी कि क्योंकि सुबह के आप लोग आए थे वो तो थोड़ा सा लाइट वेट लाइट मूड के अंदर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।